الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو قرآن پاک میں صاف صاف زیادتی کرنے والوں سے، ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے. یہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ زیادتی کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ڈاکو جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے آ کے گھر لوٹ لیا، یہ بڑی زیادتی ہوئی. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومتیں جو ہیں وہ زیادتی کرتی ہیں، کہ کئی مرتبہ حکومت کسی کو فیور کرتی ہے اور کسی کو نہیں کرتی. تو عام لوگ بس یا تو ڈاکوؤں کو زیادتی کرنے والا سمجھتے ہیں یا جو ہے وہ حکومت کو. زیادتی شریعت کی نگاہ میں لوگوں کو ان کے حق نہ دینا، ان کے حق کو نہ دینا، یہی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق رکھ دیے، ان حقوق کو ہم نے اگر نہیں پہنچایا تو یہ زیادتی میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، عام مسلمان کے حقوق ہیں، علماء اللہ والوں کے حقوق ہیں، جو آپ کے ماتحت نوکر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دشمنوں کے بھی حقوق بیان کر دیے، اور تو اور انسان کی اپنی نفس کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیے. تو جو شخص یہ حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، وہ بندہ زیادتی کرنے والا ہے. اور کئی مرتبہ زیادتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کئی مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے پاس جواب دینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. تو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ شخص جو ہے جواب دینے کا متحمل نہیں ہوتا. تو ہم زیادہ زیادتی کرتے ہیں کہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، آگے سے کوئی ریاکشن ہی نہیں آ رہا. تو کئی مرتبہ نوکروں کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں کہ جی وہ تو کچھ بول ہی نہیں پاتا. کئی مرتبہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں. کئی مرتبہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انسان زیادتی کر لیتا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے کہ کوئی رسپانس دے سکے. کئی مرتبہ بیوی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتی کوئی رسپانس دے سکے، شوہر خوب زیادتی کرتا ہے. کئی مرتبہ بچوں پہ والدین زیادتی کرتے ہیں. کئی مرتبہ انسان جو ہے کاروبار میں زیادتی کرتا ہے، तो बहुत सारे मौक़ों पे इंसान ज़्यादती कर बैठता है, और ये ज़्यादती करने वाले ये समझता है कि कोई मसला ही नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि कभी ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज़्यादा मिस्कीन वो शख्स होगा जिसने दूसरों के हुकूक पामाल किए होंगे। कयामत के दिन का सबसे मिस्कीन शख्स कौन? जिसने दूसरों के हुकूक पामाल किए होंगे, कि नेकियां लेके आएगा और आहिस्ता आहिस्ता जिनका हक अदा नहीं किया होगा, जिनके साथ ज्यादती की होगी, वो अपनी ज्यादती की बकदर इसकी नेकियां इसके नेकी के पलड़े में से ले जाएंगे, हत्ता कि इतनी ज्यादतियां होंगी कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर हुकूक लेने वाले अभी भी मौजूद होंगे, वो अब उसके बदले में अपनी बुराइयां और गुनाह इसके गुनाहों के पलड़े में डाल के जाएंगे। तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने तो नेकियां लेके आया होगा, मगर लोगों के साथ ज्यादती करने की वजह से किसी पे गुस्सा किया तो किसी का माल खाया, तो किसी को ताने दिए, तो किसी के साथ दुश्मनी की, किसी की गीबत की, तो किसी से झूठ बोला, खूब ज्यादतियाँ की, किसी का माली हक अदा नहीं किया तो किसी का जिस्मानी हक अदा नहीं किया, तो किसी का जज्बाती हक अदा नहीं किया। माँ कहती रह गई कि बेटा थोड़ा मुझे वक्त दे दे, वक्त नहीं दिया। बीवी कहती रह गई कि थोड़ी हिम्मत कर ले, घर के हालात संवर जाएं, मगर ये अपनी रविश पे रहा, न बच्चों का ख्याल न घर के खर्चों का ख्याल। नौकर कहता रह गया कि जी मुझे ना डांटें, मगर हमने एक ना सुनी। अल्लाह अकबर, कल कयामत के दिन ये सब हमारी नेकियां उठा के ले जाएंगे, रोता रह जाएगा बंदा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये कयामत के दिन का सबसे ज्यादा मिस्कीन शख्स होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि इंसान ख्याल करे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, जुल्म ना करे। मजलूम जरूर बन जाए, दूसरों का जुल्म सह लेना बेहतर है, दूसरों पे जुल्म कर देना नुकसान है। अगर तकसीम हो रही है जायदाद की, थोड़ा कम मिल गया, ये बेहतर है बजाय इसके कि दूसरे का हक ले के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। और जो शख्स ज्यादती पे सब्र कर लेता है वो सुकून में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जिसके साथ जुल्म हुआ और उसने सब्र कर लिया कि ठीक है हो गया तो हो गया, अल्लाह के नबी फरमाते मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह इसकी इज्जतों में इजाफा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। तो मशायख ने फरमाया कि जी मजलूम बन जाना बेहतर है जालिम बनने से, कि अगर दूसरा थोड़ा हमारे साथ ज्यादती कर लेता है वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम दूसरे के साथ ज्यादती कर लें। इसलिए ये ज्यादती का मामला बहुत ही संजीदा है। ज्यादती करने वाला न दुनिया में सुकून में है, न आखिरत में सुकून में है। हदीस पाक में आता है, ये जो मजलूम होता है ना, उसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, उसने जुल्म पे सबर किया है। इसलिए हम समझते हैं कि जी ज्यादती कर ली कोई मसला ही नहीं है, किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, मेरे सामने कौन क्या कुछ कहेगा। ये ऐसा नहीं है, ज्यादती करेंगे तो फंसेंगे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को नुकसान देगा अल्लाह उसको नुकसान देगा, और जो शख्स किसी को मुशक्कत में डालेगा अल्लाह उसे मुशक्कत में डालेगा। तो एक इंसाफ करने वाली जात ऊपर बैठी है, जो ज्यादती को पसंद नहीं करती, उस जात का ये हमसे मुतालबा है कि दूसरों पे जुल्म ना करें। तो हम ये समझते हैं अल्लाह वाले वो हैं कि जो कोई ख़ास किस्म के कपड़े पहनते हैं और ख़ास किस्म की आवाज़ें निकालते हैं और ख़ास किस्म की इबादतें करते, नहीं। असल अल्लाह वाला वो है जो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, जो शफ़क़तें करता है वो अल्लाह वाला है। आम तौर पे जो हम जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, उसकी चार वजूहात हैं। कई मरतबा इंसान ज़्यादती करता है ताकत की वजह से कि जी मेरे पास ताकत है, दूसरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, बाप की सारी जो जायदाद है मैं संभाल रहा हूँ, दूसरे बहन भाई मांगते भी रह जाएं तो क्या हुआ, मेरे पास ताकत है, इन सारी चीज़ों का मालिक मैं हूँ। तो ताकत की वजह से ज़्यादती और जुल्म कर दी, और ये जो ताकत की वजह से इंसान जुल्म और ज़्यादती करता है, इस जुल्म और ज़्यादती पे सज़ा पक्की है। यही वो शख्स है जो कयामत के दिन सबसे ज़्यादा मिस्कीन होगा। तो कई मर्तबा इंसान जो है वो अपनी ताकत की वजह से ज़्यादती करता है। अंग्रेज़ी का एक मकूला है कि पावर करप्ट्स, कि इंसान के पास ताकत होती है ना तो फिर वो करप्शन करता है, वो ज़्यादतियाँ करता है। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और अगर पूरा ताकत है तो फिर पूरी ज़्यादती इंसान करता है। तो इंसान अगर ताकत की वजह से ज़्यादती किसी पे करता है, अल्लाहु अकबर, तो ऐसा इंसान फंसेगा। नबी अलैहिस्सलात व सलाम अल्लाह के नबी थे, सहाबा इकराम अपनी जान देते थे, और मदीना मुनव्वरा के बादशाह और अब मक्का मुकरमा फातेह बन के जा रहे थे। आपके ग़ुलाम बिलाल जो हैं वो आपकी घोड़े की नुकेल पकड़े हुए थे। अब मदीना मुनव्वरा से निकले मक्का मुकरमा की तरफ, चंद घंटे गुजरे, आपने हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल अब तुम घोड़े पे बैठ जाओ और मैं जो हूँ घोड़े की नुकेल पकड़ूँगा। हज़रत बिलाल ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हम आपके खादिम, आपके ग़ुलाम, आप क्यों घोड़े की नुकेल पड़ेंगे और मैं कैसे बैठ सकता हूँ घोड़े पे जब आप जो हैं वो पैदल चल रहे होंगे। फरमाया, नहीं बिलाल, तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, जिस तरह मैं थक जाता हूँ चल चल के, उस तरह तुम भी थक सकते हो। तो काफ़ी देर हो गई है, अब तुम चलते रहे हो, अब तुम घोड़े पे बैठोगे और मैं घोड़े की नुकेल पकड़ूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जिनके लिए ये कायनात बनाई, वो इन मामलात में भी अपने जान निसारों के साथ भी ज्यादती नहीं पसंद फरमाते। और अल्लाह की शान, जब फातेह बन के मक्का मुकरमा पहुंचे तो हर चंद घंटे बाद अल्लाह के नबी घोड़े पे बैठते और फिर उसके बाद हजरत बिलाल बैठते। तो जब मक्का मुकरमा में दाखिल होने का वक्त आया, जब मक्का के लोगों की नज़रें आप पे थीं, उस वक्त अल्लाह की शान, नबी अलैहिस्सलात व सलाम की बारी नुकेल पकड़ने की थी और हज़रत बिलाल की बारी घोड़े पे बैठने की थी। तो लोग भी हैरान रह गए कि ये कैसा फातेह और कैसा बादशाह है कि इसका ग़ुलाम घोड़े पे बैठा है और ये नुकेल पकड़ के जो है वो मक्का में दाखिल हो रहा है। अल्लाह, कई मरतबा इंसान के पास ताकत होती है, वो कहता है ठीक है जी, ताकत है ना, दूसरा कोई मेरा नहीं बिगाड़ सकता, करो ज्यादती। मगर ऐसी ज्यादती ये सबसे बदतरीन ज्यादती है, इस पे सजा मिल के रहनी है। इसलिए हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनकी खानकाह पे पहुंचा, देख रहा था कि कोई शेख मुझे मिल जाए जिससे मैं बैत करूं। तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों पे गया, मगर माहौल मुझे अजीब लगा। यहाँ भी आया तो यही सोच रहा था कि पीर साहब बैठे होंगे, मुरीदीन आगे बैठे होंगे और पीर साहब उनको वाज़ व नसीहत और अपने अपने ख्वाब और अपनी कशफ व करामात सुना रहे होंगे। कहते हैं कि मुझे हैरानगी हो गई वहाँ जाके। एक शख्स को मैंने देखा जो कागज़ के बहुत सारे पर्चे लेके फिर रहा था और हर बंदे को वो कागज़ का पर्चा दे रहा था। मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा ये हजरत थानवी हैं जो सबको कागज़ थमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कागज़ का पर्चा मैंने देखा कि सारे मुरीदीन को हजरत कौन सा कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं। तो उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा हुआ था कि मैं तुम लोगों का शेख, शेख होने की हैसियत से कई मरतबा इंसान तरबियत में सख्ती कर देता है, उसमें ज़्यादती का अंदेशा है, तो अगर मुझसे कोई ज़्यादती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस कागज़ पे लिख दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया ताकि मैं आखिरत में शर्मिंदा ना हूँ। तो हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं कि हज़रत की ये अदा देख के मैं हैरान हो गया कि बाकी सारी खानकाहों में तो शेख जो है वो बहुत ही जाहो जलाल में बैठे होते हैं और मुरीदीन बिल्कुल झुक के होते हैं, और यहाँ ये शेख हर एक से माफ़ी मांग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादती हो गई हो। तो इस ताकत की वजह से अगर ज़्यादती की तो इंसान पकड़ा जाएगा, ये सबसे बुरी किस्म की ज़्यादती। तो चार किस्म की ज़्यादतियाँ होती हैं। एक होती है ताकत की वजह से, और एक ज़्यादती होती है कम इल्मी की वजह से। पता ही नहीं था कि ये ज़्यादती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लापरवाही कम इल्मी की वजह से ज़्यादती हो जाती है। ऐसी ज़्यादती अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इंसान को जब एहसास हो जाता है कि हाँ ये मैंने गलती की है, तो अल्लाह ताला ऐसी ज़्यादती माफ़ फरमा देते हैं। हदीस पाक में आया कि एक नौजवान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आकर उसने शिकायत की कि ये मेरा जो वालिद है ना, ये मेरी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है, मेरे माल को भी इस्तेमाल कर लेता है और मुझसे इजाज़त भी नहीं लेता। नबी अलैहिस्सलाम ने ये शिकायत सुनी तो फरमाया कि भाई अपने वालिद को बुलाओ, मैं उनसे भी पूछूं क्या वो ऐसा करते हैं। अब उन पर पैगाम गया कि जी अल्लाह के नबी आपको बुला रहे हैं। उन सहाबी को पता चल गया कि मेरे बेटे ने शिकायत लगा दी। पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा जी आपका बेटा उधर है नबी अलैहिस्सलाम के पास और नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुछ कहा है तो वो आपको बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे बेटे ने जाके अल्लाह के नबी को मेरी शिकायत लगा दी, और हम आपस में ही तय कर लेते नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये मामला क्यों उसने किया, और उसके वालिद ने ये कबूल किया कि हाँ वो अपने बेटे की चीज़ें इस्तेमाल करता है, उसका माल भी इस्तेमाल करता है। अब क्योंकि अल्लाह के नबी ने बुलाया था तो जाना भी ज़रूरी, निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जहन में अशआर बन रहे थे, वो सारा उस ज़माने का कल्चर जो था उसके अंदर अशार बहुत थे, शायरी खूब चलती थी, और जहन में अशार क्या बन रहे थे, बेटे की वजह से बहुत गम हुआ कि बेटे ने दिल तोड़ दिया, और अशार जहन में ये बन रहे थे जिनका मानी यूं बनता है कि ए मेरे बेटे ये तूने क्या किया, तूने अल्लाह के नबी से मेरी शिकायत कर दी, जिस दिन से तू पैदा हुआ है मैंने अपने लिए सब कुछ करना छोड़ दिया, तेरी फिक्र में ज़िंदगी गुजार दी, तुझे खाए पहले खिलाता तो फिर मुझे अपने लिए खाना मंजूर होता, तुझे कुछ पहनाता तो फिर अपने लिए पहनना मंजूर होता, तुझे तकलीफ़ होती तो मेरे बेटे मुझे ज़्यादा दर्द होती, तुझे तकलीफ़ होती तो मेरे आंसू निकल आते, मैंने तो अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान किया, और ए मेरे बेटे तूने ये क्या किया कि जाके अल्लाह के नबी से मेरी शिकायत कर दी। अब ये अशार थे अरबी के जिसके मानी इसी तरह के मानी बन रहे थे। नबी अलैहिस्सलात वसलाम के पास हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और ये अशार आपने अल्लाह के नबी के दिल में डाल दिए, तो अल्लाह के नबी उस आदमी की जो सवाल व जवाब करने का मामला था उसको करने की बजाय जब वो आदमी पहुंचा तो आपने कहा कि अच्छा जो तुम्हारे जहन में अशार बन रहे हैं वो अशार सुनाओ। तो उसने वो अशार सुनाने शुरू कर दिए कि ऐ मेरे बेटे जिस दिन से तू पैदा हुआ है मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है, जब तक तू खा नहीं लेता मुझे चैन नहीं आता, और जब तक तेरे कपड़े पूरे ना हो जाते तो मुझे चैन नहीं आता, और ऐ मेरे बेटे तुझे तकलीफ होती तो मेरे आंसू पहले निकल आते, और ये तूने मेरे साथ क्या किया कि अल्लाह के नबी को जाके मेरी शिकायत कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ये अशार सुनते जा रहे थे और आपकी मुबारक आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जब उस बूढ़े ने ये अशार मुकम्मल फरमाए तो आप उस नौजवान की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया कि नौजवान तू भी और तेरा सारा माल जो है उसका मालिक तेरा बाप है, जा उस जो भी इस्तेमाल वो करना चाहे तो उसे रोक नहीं सकता। तो बच्चे को भी अपनी गलती का इल्म हो गया। तो कई मर्तबा इंसान ज्यादती करता है कम इल्मी की वजह से, ताकत की वजह से नहीं की ज्यादती, कम इल्मी की वजह से की, पता नहीं था कि मैं ये गलती कर रहा हूं। तो कई मर्तबा ज्यादती की एक किस्म होती है ताकत की वजह से कि जी मेरे पास ताकत है मैं जुल्म करता हूं, इस पर तो सजा मिलनी ही है, इसी से डरना है कि किसी के साथ ये वाली ज्यादती ना हो जाए। और दूसरी ज्यादती की किस्म होती है कि इंसान किसी के साथ ज्यादती करे कम इल्मी की वजह से, इस पे भी इंसान जब मुत्तले हो जाता है अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। एक होती है इंसान दूसरे के साथ ज्यादती तो करता है मगर पीछे नीयत जो है वो अच्छी होती है। तो कई मर्तबा ये ज्यादती तो वो करता है मगर उस पर उसको अजर मिल जाता है। चुनाचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत था, मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें रहते थे, नबी अलैहिस्सलाम के चचा का घर था और उनके चचाजाद बेटे अब्दुल्ला इबन अब्बास वो उस घर में रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में मौजूद नहीं और घर के बाहर एक परनाला लगा हुआ था, बारिश आई हुई थी तो बारिश की वजह से पानी उनके परनाले में से गिरकर मस्जिद में आ गया और मस्जिद का सहन पूरा गीला हो गया। अब नमाजियों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत था, आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपने देखा कि अच्छा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर से जो पानी गिरता है परनाले से वो मस्जिद में आ रहा है, आपने अपने खादिम से हुक्म किया कि ये परनाला उतार दो। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में भी नहीं थे और हज़रत उमर के खादिम ने जाके और वो परनाला उतार दिया। जब परनाला उतार दिया और कुछ वक्त बाद जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने देखा कि घर का परनाला यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो उन्होंने उस वक्त के जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के काजी थे हज़रत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी अदालत में मुकदमा दायर किया कि जी मेरे घर का परनाला और अमीरुल मोमिनीन ने मेरी इजाज़त के बग़ैर ये परनाला उतारवा दिया। हज़रत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत लगी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक तरफ से तशरीफ़ लाए, उबै इब्ने काब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर से पूछा, जी अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने ये परनाला उतारा है इनकी इजाजत के बगैर? इनका परनाला? हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ काजी साहब, मैंने उतारा है। उसकी वजह यह है कि इस पर नाले से पानी गिरता और ये पानी मस्जिद में आता, तो क्योंकि इस मस्जिद का रखवाला भी मैं और इस वक्त आप लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया है, तो मस्जिद को नुकसान पहुंच रहा था, इस वजह से ये परनाला मैंने निकाल दिया। अब काजी हजरत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु, उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा कि जी क्या आपके परनाले का पानी मस्जिद की जमीन को खराब कर रहा था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हजरत मुझे ये नहीं पता कि वो खराब कर रहा था या नहीं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये परनाला जो है ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से हमारी छत पे लगाया। तो जो चीज़ अल्लाह के नबी ने लगाई उसको मैं कैसे उतरता हुआ देख सकता हूँ? जब हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह उन्होंने ये बात सुनी तो आपने अपनी रूलिंग जारी की, अपना फैसला सुनाया कि अब फैसला ये है कि ये परनाला वापस लगेगा, कि ये अल्लाह के नबी के मुबारक हाथों से लगा हुआ है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु झुकेंगे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनकी कमर पे चढ़ के वापस लगाएंगे। तो कई मर्तबा इंसान ज्यादती करता है, मगर ये ज्यादती जो है वो अच्छी नीयत की वजह से होती है। ये ज्यादती इसलिए थी कि मस्जिद का पानी जो है, मस्जिद का सहन खराब हो रहा था। तो जो ज्यादती इंसान अच्छी नीयत से करता है, कई मर्तबा उस पे अजर भी मिलता है। तो ज्यादती और जुल्म की चार किस्में उलमा के नजदीक, एक ज्यादती इंसान करता है अपने ताकत के बलबूते पे, इस ज्यादती पे अल्लाह ताला उसका मुआखजा करेंगे अगर तौबा नहीं की। एक ज्याती इंसान कम इल्मी की वजह से करता है और जब उसको पता चलता है तो अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। और एक ज्याती इंसान नीयत अच्छी होती है मगर उस अच्छी नीयत की वजह से ज्याती कर बैठता है, इस ज्याती पे कभी कभी अल्लाह ताला जो है अजर भी अता फरमाते हैं। और एक चौथी किस्म की ज्याती है, और ये ज्यादती जो है इंसान मजबूरी की वजह से करता है। उसको पता होता है कि ये जुल्म कर रहा हूं मगर वो मजबूर होता है, उस जुल्म किए बगैर गुजारा नहीं। तो इंसान जब मजबूरी की वजह से करता है, नीयत उसकी ये होती कि ना करूं, दिल भी उसका ये होता है कि मैं ये ज्यादती ना करूं, मगर मजबूरी की वजह से जब करता है तो अल्लाह ताला कई मर्तबा उस मजबूर बंदे की दुआ की बरकत से उसको उस ज्यादती से बचा भी लेते हैं और उस ज्यादती को माफ भी कर देते हैं। हमारे मुल्क के एक साहब का वाकया, वो उन्होंने खुद सुनाया। सऊदी अरब के रहने वाले सऊदी अरब नौकरी करने के लिए गए और कई साल सऊदी अरब में रहे। शुरू के 13-14 साल जो रहे हर साल हज के लिए जाते। हज के बाद 13 साल हज किया और 13 साल हज करने के बाद जो है उनको एक बुजुर्ग मिले हज के फौरन बाद हरम के अंदर। उनको यकीन हुआ कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं, वक्त के बड़े शेख थे। ये उनके पास गए और जाकर उन्होंने बताया कि जी 13 साल से यहाँ सऊदी अरब में हूँ, हर साल हज करता हूँ और हर साल हज मुकम्मल होने के चंद दिन बाद ही ख्वाब के अंदर एक ज़ोर से आवाज़ आती है कि हमने तेरे हज को कबूल नहीं किया। ये कह के वो ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। उन बुज़ुर्गों ने जब ये वाक्या सुना तो बड़े हैरान हुए, बहुत सोचा। अल्लाह वालों को अल्लाह ने फरासत दी होती है, उस फरासत के बलबूते पे इन्होंने उससे पूछा, क्या तेरे वालदैन जिंदा हैं? उसने कहा हाँ जिंदा है। उसने कहा वाकई जिंदा है? नौजवान ने कहा कि सच्ची बात यह है कि मुझे अपने वालदैन का पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि तुझे अपने वालदैन का पता ही नहीं? उसने कहा गांव में रहता था, शादी हो गई, माँ बाप का एक ही बेटा था और माँ बाप ने बड़ी ही शौक से मेरी शादी की। बीवी जो आई उसके मेरे घर में मेरी वालदा से बनती नहीं, वो मुझे कहती रहती कि बस हम अलग होते हैं। अब औलाद वाला हो गया, बीवी हर वक्त लड़ती थी कि अलग होना है और माँ बाप जो हैं वो दोनों बूढ़े थे, मैं भी सोचता कि कैसे इनको छोड़ो। आखिर को लड़ाइयों से तंग आकर मैंने फैसला किया कि अच्छा गांव छोड़ता हूँ और शहर में नौकरी ढूंढता हूँ। इंजीनियर था तो शहर में भी नौकरी मिल गई, अल्लाह की शान शहर चले गया, मगर वालदेन को छोड़ दिया पीछे तो ये दिल में बात रहती थी। तो कभी पैसों से और कभी उनके पास जाके उनकी खबर लेता। बीवी को ये भी पसंद नहीं आया, फिर लड़ाई झगड़े हुए। बीवी ने कहा कि मुल्क से बाहर नौकरी ढूंढो। अब मैं कहता कि मुल्क छोड़ दूंगा तो फिर क्या बनेगा, वालदैन अकेले हैं, बूढ़े हैं, मगर क्योंकि घर के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, इन झगड़ों से जान छुड़ाने के लिए सऊदी अरब में नौकरी ढूंढी और नौकरी मिल गई। अब 13 साल से यहाँ हूँ और क्योंकि झगड़ा बीवी खूब करती है, 13 साल से वालदैन की कोई खैर खबर ही नहीं है। उन बुजुर्गों ने कहा कि शायद यही वजह है कि तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। वो फिर रोने लगा, धाड़े मार मार के रोया। तो फिर बुजुर्गों ने उनको ये मशवरा दिया कि अब भी वक्त है, तू जा उन वालदेन के पास और उनसे माफी मांग। तो अब तरतीब बनाई वापस मुल्क आने की और वापस आने के सफ़र तय किया। अब प्लेन में जब वापस आ रहा है तो सोच रहा था कि मेरे वालदेन तो मुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे, इन बूढ़ों के साथ जो मैंने मामला किया, जो जुल्म किया, वो तो मुझसे बात करना भी नहीं चाहेंगे। अल्लाह से भी माफ़ियाँ मांग रहा था, गम में भी था। वापस आया, अपने गांव पहुंचा, 13-14 साल बाद वालदेन से मुलाकात, ये भी नहीं पता वो किस हाल में है। जब गांव में दाखिल हुआ तो सोचा कि कुछ लोगों से भी खबर लूं, अचानक पहुंचने से बेहतर है पता चल जाए किस हाल में है।
तो किसी से कहा कि जी ये फलां जगह जो बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे उनका क्या हाल है। एक शख्स ने कहा हाँ दोनों बूढ़े हैं तो सही थे तो सही, मगर उसका जो शौहर है वो तो फौत हो गया और जो बीवी है वो नाबीना हो गई है, गम की वजह से आंसू बहा बहा के नाबीना हो गई है। सुना है उनका कोई बेटा है जो मुल्क से बाहर चले गया है और उसने कई सालों से वालदैन को नहीं पूछा। ये बात सुन के तो दिल पे जैसे छुरा चल गया। बड़े ही डर के साथ अपने घर की चौखट पे पहुंचा। नाबीना वालदा बाहर सहन में चारपाई लगा के लेटी हुई थी और ये घर के दरवाजे पे पहुंचे और ये वालदा जो है ये दुआ कर रही थी, बूढ़ी वालदा, कि ए अल्लाह तूने मेरा शौहर मुझसे ले लिया, ए अल्लाह मेरा बेटा भी चले गया है, मैं उस बेटे को बहुत याद करती हूँ, हे मेरे मालिक तू मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, मेरा बेटा मुझे वापस भेज दे, गो कि अब मेरी आंखें तो नहीं रही कि मैं अपने बेटे को देख सकूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको अपने सीने से लगा लूं ताकि मरने से पहले मैं अपने दिल को ठंडा कर लूं। बेटे ने यह बात सुनी तो आंसुओं के साथ आगे बढ़ा और बीवी से और वालदा से कहा कि मैं तेरा बदबख्त बेटा तेरे पास आ गया हूँ, तुझसे माफी मांगता हूँ। वालदा ने कहा तू माफी ना मांग, तू आ गया यही मेरे लिए सब कुछ है। वालदा ने अपने सीने से उसको लगाया और बहुत दुआएं दी और बहुत ज्यादा उसके सर पे हाथ रखा, उसके सर पे बोसा दिया। बेटे के दिल को भी तसल्ली हुई कि मेरी वालदा जो है उसने मुझे माफ कर दिया। बेटा कई दिन वालदा के पास रहा, कुछ अरसे बाद वो वालदा फौत हुई, फिर वो वापस सऊदी अरब आया अपनी नौकरी पे। अल्लाह अकबर, अगले साल फिर हज किया, 14वां हज। अब जो हज किया तो हज के चंद दिन बाद ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ फलां शख्स हमने तेरा ये हज भी कबूल कर लिया और जो तेरे पिछले हज थे वो भी सब कबूल कर लिए। तो जब इंसान कभी बहुत मजबूर हो के ज्यादती करता है और फिर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसको रास्ता भी दिखा देते हैं और उसकी गलती को भी जल्दी माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें ज्यादतियों से, जुल्म से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें शफकत वाला दिल अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खैरुन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है, मन यन्फउन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो जो दूसरों के साथ शफकत करे, दूसरों को फायदा पहुंचाए, वो लोगों में बेहतरीन शख्स, और जिसकी तबीयत दूसरों को जुल्म में देनी है वो लोगों में भी बदतरीन और वो अपने साथ ज्यादती करने वाला है। अल्लाह ताला जुल्म और ज्यादती करने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ आके आज हमारा ये बयान मुकम्मल हुआ। साथ ही थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके हाथ झोली है न प्याला है। भिखारी वो जिसे हिरसों हवस ने मार डाला है। तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी जुबूहाली। तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी जुबूहाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसिया के दलदल में। लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसिया के दलदल में। सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ।
لا إله إلا الله. رسول الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی مسکینی سے محفوظ فرما، اللہ حقوق لینے والوں کی فہرست سے، اللہ حقوق لینے والوں کے ہجوم سے محفوظ فرما، میرے مالک ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ، آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک ہم اپنی خواہشات کے سامنے مغلوب ہیں. اے اللہ، رات توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ، صبح توبہ کرتے ہیں، رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک، ہم دوسروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. اے اللہ، جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، میرے مالک ہمیں اپنی زیادتیاں بھاری نہیں لگتے. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. میرے مالک، جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا، اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے. اللہ، جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا، میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اللہ، جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا، میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اللہ، جس طرح دوسروں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنے کا حق تھا، میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اللہ، ہم تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں. اللہ، شیطان نے بھی ہمیں لوٹ لیا، اللہ ہمارے نفس نے بھی ہمیں لوٹ لیا. اے اللہ، لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ، لٹے ہوئے بندوں پر مہربانی فرما. اللہ، ہم نے تو دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ جو شخص لٹا جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کرتے ہیں. اے اللہ، آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں. اللہ، ہم لٹے ہوئوں کے حال پر رحم فرما. اللہ، لٹے ہوئوں کے حال پر رحم فرما. میرے مالک، کرم کے فیصلے فرما. اللہ، جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ، سر کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی پہ جمع. میرے مالک، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے. اللہ، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. اللہ، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. میرے مالک، جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ، اس وائرس کی وجہ سے بہت لوگ اللہ بے روزگار ہیں. اللہ، بے روزگاروں کو اللہ حلال طیب برکتوں والا روزگار نصیب فرما. میرے مالک، بہت لوگ بیمار ہیں. اللہ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ، جو گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ، جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. میرے مالک، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما.
اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ بڑی امید سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی امید میں ناکام نہ فرما، اللہ اس بندے پہ کوئی اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.